ओम शांति।
ओम शांति।
एक प्रश्न है, 25 तारीख को कौन आया?
25 तारीख
को कौन आया था?
कौन आया?
दादी बाबा नहीं, कौन आया? आत्मा आई थी, सूक्ष्म शरीर आया था, कौन आया था?
बाबा दादी के संस्कार क्या है?
बाबा दादी के संस्कार, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, स्थूल शरीर है, तीन चीजें, संस्कार, स्वभाव, कौन है? क्या हुआ? फाइनल आंसर तो यही है, क्योंकि आत्मा का शरीर से निकलना इसे मृत्यु कहा जाता है। आत्मा शरीर से नहीं निकल सकती है। सूक्ष्म शरीर आ सकता है, बिना आत्मा के सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा की उत्पत्ति है। आत्मा का जो दिव्य प्रकाश है वही सूक्ष्म शरीर है, तो बिना आत्मा के सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता, स्थूल शरीर तो आ ही नहीं सकता। फिर क्या हो रहा है इधर? अच्छा, अभी जो बच्चा है क्या उसे पता है वो यहाँ आया?
नहीं।
अगर पता हो तो
इधर कौन जाएगा?
वो इधर आ जाएगा। जो आत्मा जिसने यज्ञ की पालना की है, जिसने अपना जीवन यज्ञ को दिया, अगर उस आत्मा को ये पता चल जाए कि मैं यहाँ की हूँ, वो भाग के आ जाएगा। तो वो बच्चा क्या कर रहा है उस समय?
समय वो रेस्ट में है।
जरूरी है रेस्ट में है या अपना
क्यों एकांत में होगा? कुछ
क्यों एकांत में होगा? उसका अपना जीवन चल रहा है।
तो
उसका जरूरी नहीं है एकांत में रहना, रेस्ट में रहना, सोए रहना, कुछ जरूरी नहीं है। अब क्या, जो आत्मा आ रही है, हम जो कह रहे हैं दादी आई जाती है, जो आ रहा है वो क्या हो रहा है अभी? वो जो आत्मा है वो तो इधर की पूरी विस्मृति है, उसको विस्मृति है, संपूर्ण विस्मृति है। तो वो आत्मा का यहाँ, उस आत्मा के संस्कार भी नहीं आ रहे इधर, वो आत्मा के संस्कार भी नहीं आ रहे, क्योंकि उस आत्मा के संस्कार तो बच्चे के, और वो बच्चा अज्ञानी है। माँ बाप भले संपर्क में है, लड़का है, साधारण स्कूल है, वो अलग बात, परंतु वो बच्चे के संस्कार भी नहीं आ रहे, तो हो क्या रहा है इधर?
तो बाबा
दादी
के जो
दादी
संस्कार
बस ये खेल पाल है। एक यहाँ के संस्कार मर्ज हो रहे हैं तुलसी दादी के, और उस आत्मा के संस्कार खाली इमर्ज हो रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है,
केवल संस्कार इमर्ज,
खाली संस्कार मर्ज और इमर्ज का खेल है।
अपने दादी के
अभी उस दिन कल की मुरली में देवताएं भोग लगा, तुम भोग लगाते हो देवताओं को, तो देवताओं को भी लालायित है वो भोजन के लिए। तो सूक्ष्म वतन में देवताओं की और ब्राह्मणों की महफिल और मेला, विवेक कहता है यह असंभव है, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, देवताओं का जन्म ही नहीं हुआ है अभी, तो देवता आ कैसे रहे हैं? आज की मुरली में शहजादी यहाँ आकर आती है, शहजादी की आत्मा यहाँ आती है और फिर कहती है कि इतने बड़े महाराजा और भोजन पका रहे हैं, इतना साधारण कार्य। अब ये शहजादी की आत्मा कहाँ से है? शहजादी तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है देवताओं का। तो सूक्ष्म वतन में देवताओं का और ब्राह्मणों का मिलन हो कैसे सकता है अभी? इसका क्या राज है?
मिलन मुक्त बाबा
है ही नहीं, स्वप्न में हमको दिखता है, स्वप्न आँख खुलने के बाद क्या है, कहाँ गए वो सब? अदृश्य का खेल है सर, मर्ज करने की बात है बस, वो हो नहीं रहा है, खाली मर्ज कर रहे हैं। गुरुवार को भोग लगता है, कौन जा रहा है ऊपर? संदेश लेके कौन आ रहा है? आत्मा जा रही है, सूक्ष्म शरीर जा रहा है, स्थूल शरीर जा रहा है, स्थूल शरीर नहीं जा सकता, सूक्ष्म शरीर आत्मा के बगैर नहीं जा सकता, आत्मा शरीर से निकल जाने को मृत्यु कहा जाता है। तो जा कौन रहा है, तो दिख क्या रहा है, कोई ना कुछ जा रहा है ना कुछ दिख रहा है, यही सभी मर्ज हो रहा है। सर्वशक्तिवान के हाथ में इतना तो है, यहाँ के संस्कार मर्ज करके वहां के संस्कार इमर्ज कर देना, इतना तो वो कर सकता है।
यहाँ रहते हैं उसको ऊपर का अनुभव,
और वो सृष्टि के नियमों को नहीं तोड़ेगा, भगवान कभी नहीं तोड़ेगा किसी आत्मा को। किसी के जिंदा होते उसकी आत्मा को वहां से निकाल कर, भले वो सो गया तो उसकी आत्मा को निकाल कर इसकी आत्मा में डालते, ऐसा थोड़ी करेगा, कर ही नहीं सकते। संस्कार के इमर्ज और मर्ज का खेल है बस, कोई ना कहीं कहीं से कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना कोई आत्मा आ रही है ना कोई सूक्ष्म शरीर आ रहा है ना कोई स्थूल शरीर आ रहा है। उसी आत्मा में वो संस्कार मर्ज हो रहे हैं और वो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। खाली एक ही चीज है इसमें भगवान के खुद के लिए कि वो आता है, क्योंकि उसका कोई अपना एक शरीर उधर है नहीं कि जिसको छोड़ के वो आए और वो मृत्यु हो जाए उसकी। शिव बाबा की कभी मृत्यु नहीं होती है, वो तो आता है और जाता है, साकार महावाक्य एक मुरली में, वो खाली आता है और जाता है। उसका संगम युग खत्म हो गया, अभी उसका पाठ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, उसका आना और जाना है। तो खाली वो एक ही अपवाद है कि उसकी आत्मा आती है, ब्रह्मा के लिए कहा जा सकता है कि दोनों मिलकर आते अवतरण के समय। भोग लगाना, संदेशी, ये सारा ही सब कुछ आ गया इसमें। अदृश्य, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ये खेल ही अदृश्य का है, मर्ज इमर्ज का खेल है बस। कभी कभी उस दिन बाबा ने कहा ना, बाबा को भी पहले साक्षात्कार हुए, स्थापना और विनाश का बाद में नहीं हुए, कल परसों ही बताता था। फिर उसके बाद में बाबा फिर बच्ची को कहता था कि बाबा इसकी रस्सी खींचो, अगर साक्षात ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कई बच्चे साकार मूल्य में यहाँ तक कहा कि कई बच्चे कहते ये ध्यान में जाने का क्या है, इससे ज्ञान का क्या रिलेशन है। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में पार्ट है, कई लोग ये देख के भी छोड़ के चले जाते हैं ज्ञान को, पर इसको भी समझना है कि इसका भी ड्रामा में नूंद है, इसके लिए इसको भी स्वीकार करो। नहीं तो ये क्या है, यहाँ लाइट वहाँ लाइट, इधर से लाइट उधर से लाइट, इधर पहाड़ी उधर पहाड़ी है ये नूंद है ड्रामा में। बाबा ने तो कहा साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, ये बच्ची अभी साक्षात्कार ध्यान में गई है, बाबा की याद में है, मीरा को साक्षात्कार हुआ क्या, स्वर्ग जाने के लायक बनी नहीं, क्या उसकी सद्गति हुई नहीं, क्या उसके पाप भस्म हुए नहीं, परसों की मुरली। तो मीरा को साक्षात्कार हुआ तो वो उसको कुछ नहीं हुआ फायदा, तो क्या मीरा इस यज्ञ में है, मीरा इस यज्ञ में है या नहीं। निखिलेश भाई
मीरा तो भक्ति का
करती
है। बाबा ये बातें मीरा के लिए कौन सी बातें कर रहे हैं, साक्षात्कार से संबंधित बातें कर रहे हैं। जो आत्मा कृष्ण के लिए ऐसी पागल है वो यज्ञ में ना हो ये असंभव है, इधर ही ज्ञान में ही होना है उसको, और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा भी नहीं है,
विशेष आत्मा,
बहुत श्रेष्ठ बहुत महान, कोई ना कोई दादी या मम्मा, जो ब्रह्मा से इतना कृष्ण से इतना प्यार करने वाली आत्मा संगम पर उस आत्मा से न मिले यह असंभव है। ये बाबा ये बातें तो उसके साक्षात्कार के लिए कह रहे कि साक्षात्कार से कुछ फायदा नहीं, साक्षात्कार से सद्गति नहीं होगी, साक्षात्कार से विकर्म विनाश नहीं होंगे, साक्षात्कार से स्वर्ग जाने के लायक नहीं बनेंगे, और वो आत्मा इधर ही है क्योंकि विशेष आत्मा है, उसका यहाँ ही होना है। इस ड्रामा में जो भी महान आत्मा है हीरो पार्ट वाले, तो राणा वो जो भी है, तो इतना उसने जीवन में त्याग है, उसको तो यहीं रहना है। वो कथाएं है अभी, उसके देवर ने भेजा उसने पिया पर उसको कुछ नहीं हुआ।
ऐसा प्रहलाद के भी चरित्र में भी ऐसा बताते हैं,
प्रहलाद तो एकदम ही मतलब पौराणिक हो गया, ये तो भी अभी अभी है, इसकी डेट पता है उसका सब पता है हमको, प्रहलाद तो एकदम ही विष्णु पुराण की बातें हो गई। तो वो आत्मा को यही रहना चाहिए, वो भी एक सूक्ष्म राज, मतलब जो भी इस ड्रामा में हीरो पार्ट है, चाहे वो चाणक्य है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान है, चाहे वो झांसी की रानी है, ये हीरो एक्टर्स है इस ड्रामा के, सारे के सारे, बप्पा राणा, ये सारे सारे एक्टर्स जो भी हीरो, उनको यही होना है। वो तो विकारी हीरो एक्टर। चलो तो ये था राज। आज क्या बोला बाबा ने, किसको याद किया?
मधुरता के सागर में लहरा रहे
मधुबन निवासी, अर्थात मधुरता के सागर में लहराने वाले, मधुबन अर्थात
मधुबन लाइट हाउस मार्क,
मधुबन अर्थात लाइट हाउस, मधुबन अर्थात चरित्र भूमि, मधुबन अर्थात कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, परिवर्तन भूमि, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, मधुर मिलन भूमि, टीवी स्टेशन,
जादू की नगरी,
महान भूमि, जादू की नगरी, लाइट हाउस, माइट हाउस, मधुबन अर्थात पुण्य भूमि, पुण्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। तुलसीदास लिखता है कि वो भूमि पुण्य है, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, तो इस भूमि पर किसके पाव पड़े? स्वयं भगवान के पैर इस भूमि पर पड़े हैं, परमात्मा अवतरण भूमि।
उन्होंने दोहे कैसे लिख दिए, उनको अनुभव हुआ?
हम ही थे।
लिखने
वाले कौन है? लिखने वाले है कौन? शास्त्र भी तुमने ही लिखो। तुमसे लोग पूछते हैं क्या तुम शास्त्र को नहीं मानते हो, तो उनसे कहो हमसे ज्यादा और कोई मानता ही नहीं, हम मानते भी है, हम जानते भी, अरे लिखने वाले भी हम ही है। किसने लिखे? हम नहीं लिखे, पर अभी हम ज्ञान में हैं, हमारा भक्ति मार्ग पूरा हुआ, ऐसे उनको बताओ। मधुबन अर्थात शीश महल, मधुबन अर्थात शोकेस, मधुबन अर्थात विश्व की स्टेज, मधुबन अर्थात
पांडव भवन,
पांडव भवन, मधुबन अर्थात ओम शांति भवन, मधुबन अर्थात शांति वन, मधुबन अर्थात ज्ञान सरोवर, मधुबन अर्थात ग्लोबल हॉस्पिटल, मधुबन अर्थात पीस पार्क, मधुबन अर्थात शांति सरोवर, मधुबन अर्थात ज्ञान मान सरोवर, मधुबन अर्थात दिलवाड़ा, मधुबन अर्थात
अचलगढ़,
अचलगढ़, मधुबन अर्थात गुरु शिखर, मधुबन अर्थात ब्रह्मा कुमारी हेड क्वार्टर, मधुबन अर्थात ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय, मधुबन अर्थात विशाल भवन, विशाल भवन, मधुबन अर्थात योग भवन, योग का भवन, मधुबन अर्थात लाइट हाउस, मधुबन अर्थात माइट हाउस, मधुबन अर्थात विश्राम भवन, मधुबन अर्थात ज्ञान विज्ञान भवन, वो है मुंबई का ज्ञान विज्ञान भवन, ये है ज्ञान विज्ञान भवन, मधुबन अर्थात कमल कुंज, मधुबन अर्थात सुखधाम, मधुबन अर्थात स्वर्गम युग का स्वर्ग, मधुबन अर्थात स्वर्गाश्रम, मधुबन अर्थात स्वर्ग का मॉडल, मधुबन अर्थात अनंत आश्रम, आनंद आश्रम, स्वर्गाश्रम आनंद आश्रम स्वर्ग का मॉडल, मधुबन अर्थात सच्चा सच्चा स्वर्ग, मधुबन अर्थात संगम युगी स्वर्ग,
यज्ञ कुंड,
मधुबन अर्थात यज्ञ कुंड, मधुबन अर्थात महायज्ञ कुंड, मधुबन अर्थात तपस्या भूमि, मधुबन अर्थात महातपस्या भूमि,
सर्वश्रेष्ठ तीर्थ भूमि,
सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, मधुबन अर्थात शिव बाबा का सबसे बड़ा मंदिर अर्थात शिवालय, टावर ऑफ पीस, मधुबन अर्थात शांति स्तंभ, मधुबन अर्थात प्रकाश स्तंभ, मधुबन अर्थात
ज्ञान
बेहद का कारखाना, मधुबन मनुष्य से देवता बनाने का कारखाना, मधुबन अर्थात बेहद का क्लब, बेहद का एयरपोर्ट, मधुबन अर्थात ब्राह्मणों का किला, मधुबन अर्थात बेहद की हट्टी, मधुबन अर्थात आखिरी स्टैंप लगाने की जगह, ठप्पा लगाने की जगह, मधुबन अर्थात
होली लैंड,
फाइनल लैंड लगाने की जगह, मधुबन अर्थात होली पैलेस, मधुबन अर्थात होली लैंड, मधुबन अर्थात मनोरंजन भूमि, मधुबन अर्थात वनवा वनवास, मधुबन अर्थात बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का क्लब, और मधुबन अर्थात
मधुबन,
मधुबन अर्थात मधुबन, मधुबन अर्थात सागर का कंठा, मधुबन अर्थात समर्थ भूमि, मधुबन अर्थात व्यस्त से मुक्त होने की भूमि, मधुबन अर्थात हो गया। और सच्चा सच्चा गौशाला, सच्चा सच्चा हरिद्वार,
हरिद्वार
मधुबन अर्थात सच्चे सच्ची चित्रशाला,
चित्रशाला
मधुबन अर्थात। और भी कुछ है, कितने हो गए, गिने कितने?
मोबाइल ने गिनती कर ली होगी,
मोबाइल ने गिनती कर ली होगी, मोबाइल से लिख लेना। मधुबन अर्थात खुशियों की खान, मधुबन अर्थात प्राप्तियों की खान, मधुबन अर्थात आखिरी हट्टी। अनिल भाई मधुबन अर्थात यहाँ कौन कौन से भवन है याद करो सारे। भैरव का धोबी घाट, अवतरण भूमि, पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, मधुबन अर्थात विशेष भूमि, आज की मुरली से
वरदान भूमि,
वरदान भूमि, वरदानी भूमि, शोकेस विश्व का शोकेस, विश्व की स्टेज, बेहद की स्टेज, मधुबन अर्थात सबको अंजलि देने वाली भूमि, मधुबन अर्थात अभी बहुत बाकी है। आबू आबू है गति सदगति की हट्टी, गति सदगति की हट्टी, गति सदगति का स्थान, असलम देने का स्थान, मधुबन अर्थात रेस्ट हाउस, मधुबन अर्थात टॉप का स्थान,
टॉप
मधुबन अर्थात परमात्म चरित्र भूमि, और मधुबन अर्थात नागेश भाई मधुबन अर्थात शांतिवन के सारे याद करो क्या क्या है, ब्रह्मलोक, त्रिलोक, ज्ञान गंगा, और क्या क्या है मधुबन शांतिवन में, क्या क्या शिव शक्ति, विष्णुपुरी,
इंद्रप्रस्थ,
इंद्रप्रस्थ तो है ना, इंद्रप्रस्थ मधुबन इंद्रप्रस्थ है। शांतिवन में जितने हैं छोटे 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 सब नाम, मधुबन अर्थात ओम शांति रिट्रीट सेंटर, ओआईटी ट्रेनिंग सेंटर, बरबर बरबर बोला, प्रदर्शन भवन, मधुबन अर्थात विश्व नव निर्माण का केंद्र बिंदु, मधुबन अर्थात फाउंडेशन भूमि, मधुबन अर्थात स्पिरिचुअल म्यूजियम, मधुबन अर्थात सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बेहद का स्कूल, बेहद की पाठशाला, बेहद का स्कूल, बेहद की यूनिवर्सिटी,
सच्चा सच्चा शिवालय,
शिवालय शिव बाबा का मंदिर,
रूहानी हॉस्पिटल,
सबसे बड़ा हॉस्पिटल
रूहानी
हॉस्पिटल, निराकारी बाप को भी इस भूमि से विशेष स्नेह, विशेष स्नेह है, विशेष आत्माएं हैं, रहने वाली में सब में विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताओं को दिखाओ। और एक जगह बोला ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा आए और उसमें विशेषता ना हो, हो नहीं सकता। विशेष भूमि, विशेष प्यार, हर एक में विशेषता, विशेषता को कर्म में लगाओ, विशेषता को दिखाओ, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, विशेष आत्मा, महान आत्माएं। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासी अर्थात मधुर भूमि, मधुबन अर्थात मधुर भूमि, तो तुम्हारी वाणी मधुर, वृत्ति मधुर, कर्म मधुर, महान आत्माएं हो तो जैसे महान आत्मा, जैसी भूमि का गगन है वैसे खुद बने हो, भूमि इतनी महान है तो वैसे खुद हो। कोई दूसरे यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं, अनुभव क्या करते हैं, स्वर्ग का अनुभव कहते हैं, तो तुम डबल स्वर्ग के अधिकारी हो, यहाँ पर भी स्वर्ग और वहाँ पर भी स्वर्ग, ये है संगम युगी स्वर्ग, वो है स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग श्रेष्ठ है, ये या वो,
अभी
इस स्वर्ग में क्या है और उस स्वर्ग में क्या है, अंतर क्या है और विशेषता सिमिलैरिटीज क्या क्या है, इस स्वर्ग में स्वयं भगवान तुम्हारा साथी है, वहाँ भगवान साथी नहीं है, इस स्वर्ग में तुमको उठाता कौन है, स्वयं भगवान, वहाँ प्रकृति उठाती है, यहाँ प्रकृति पति उठाता है, जगाता कौन है तुमको, प्रकृति पति, इस स्वर्ग में कौन तुमको पढ़ाता है,
भगवान
वहाँ मनुष्य देहधारी तुमको पढ़ाते हैं।
इस स्वर्ग,
हाँ इस स्वर्ग में तुमको वरदान कौन देता है रोज? स्वयं वरदाता। वहाँ कौन वरदान? वहाँ वरदान का सवाल ही नहीं, वरदान है ही नहीं उधर। पालना पढ़ाई श्रीमत कौन देता है? भगवान। वहाँ किसकी श्रीमत पर चलते हो? मनुष्य की मत पर चलते हो। दैवी मत वो है, दैवी मत संसार में है, आसुरी मत ये है ईश्वरीय मत। दैवी मत और आसुरी मत ये दोनों भी गिरती कला की मत है, ईश्वरीय मत चढ़ती कला की मत है, दैवी मत भी गिरती कला की मत है। तो यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है उस स्वर्ग में। इस स्वर्ग में और क्या क्या होता है?
भोजन,
भोजन
ब्रह्मा भोजन मिलता है
यहाँ, ब्रह्मा भोजन है। देवता है तरसते हैं क्या? विवेक संगत है ये बात?
लिखा है
देवताओं को ब्रह्मा भोजन से क्या लेना देना?
सूक्ष्म रूप में
उनको पता ही नहीं, उनके पास तो अति शुद्ध भोजन है। वो
तो
देवताओं को ज्ञान ही नहीं
बोल दिया। मैं
वो
क्या
तो करूं? वो वही वाली बात है फिर। खेलपाल, खेलपाल है। हाँ वो खेलपाल है। देवताओं को क्या लेना देना है ब्रह्मा भोजन से? देवताओं को कुछ देवताओं को कुछ लेना देना नहीं है ब्रह्मा भोजन। अच्छा वो फिर भी ये भाग्य है। और इस स्वर्ग में और उस स्वर्ग में क्या अंतर है? अरे नहीं नहीं इधर की अच्छी बातें बताऊं। यहाँ इंद्रिय सुख है, वहाँ इंद्रिय सुख है। हाँ यहाँ ईश्वरीय परिवार है, वहाँ दैवीय परिवार होगा।
यहाँ बेहद का परिवार है,
यहाँ बेहद का परिवार है, प्रभु परिवार, प्रभु परिवार है। वो प्रभु परिवार नहीं है, वो देवताओं का परिवार है। उसमें देवता है बस परिवार में। वही वहाँ इंद्रिय, वहाँ नहीं, वहाँ वो रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे। वहाँ कहाँ पे सोएंगे? वहाँ वो तुम इसमें गदेले में सोएंगे। कौन सी मुरली है ना जिसमें कंपैरिजन है? मखमल के गदेलों में सोएंगे। यहाँ तुम परमात्मा गोद में सोते हो।
हमारा सर्व संबंधी स्वयं भगवान,
सर्व संबंधी एक है। यहाँ पर सर्व संबंध एक से, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही सब कुछ, एक बल एक भरोसा, एक रस एक मत। यह दिव्य बुद्धि के विमान में, सूक्ष्म शरीर के अंतवाहक शरीर के विमान में तुम घूमते हो। यहाँ वहाँ तो स्थूल विमान रिफाइन ज्ञान योग का वरदान है कि रिफाइन ज्ञान योग का पेट्रोल। तो बाबा कह रहे हैं तुम डबल स्वर्ग के अधिकारी हो, यहाँ पे भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। अभी आगे उस स्वर्ग में नेचुरल संस्कार कौन से होते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, तृप्त आत्मा, संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा। तो वो उनके जैसे नेचुरल संस्कार है वैसे यहाँ नेचुरल संस्कार बने हैं। बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो तुमको भी तृप्त आत्मा बनना है। कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं की अविद्या, इच्छाओं की अबोधता, इच्छाओं की अनभिज्ञता, इच्छाएं क्या होती है पता ही नहीं, अविद्या पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। इतनी ऊंची बात है हम ही ऊंचे ये शब्द ही नहीं होंगे। प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, स्वर्ग के खजाने में संपन्नता। तो हम संपन्न है, हमारे खजाने में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ भी हो फिर भी वो गिरती कला ही है। देवता है गिरती कला है। कब से गिरती कला चालू हुई देवताओं की? पहले जन्म के पहले घंटे के पहले सेकेंड के। रावण की प्रवेशता कब है ड्रामा में? पहले जन्म के पहले घंटे के फर्स्ट सेकेंड से ही गिरती कला चालू हो गई है। गति उसकी कम है द्वापर तक, द्वापर से तेज है। रावण तो वहीं पे प्रवेश कर चुका है, परंतु आत्माओं में शक्ति इतनी ज्यादा है कि वहाँ विकार नहीं है, आत्मिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि वहाँ उसका असर ही नहीं है बिल्कुल, परंतु वो वहीं से चालू हो चुका है। गिर तो यहाँ से फास्ट हो गया है, परंतु वो तो गिरना तो वहीं से चालू हो गया ना देवता। और देवताओं में भी तो देहभान है, देवता शादी करते कि नहीं, फिर देवता में देहभान है ना,
कृष्ण का वाला है संपूर्ण
वो है, कृष्ण संपूर्ण पवित्र है, परंतु
लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण की कम पवित्र है, आकर्षण कृष्ण का ज्यादा है, विश्व भर में सबसे ज्यादा कृष्ण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण के कम मंदिर है, क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है,
इसलिए कुमार भैसा कुमार ही है।
वो कुमार है ना, कुमार की तो सतयुग में भी महिमा है, लक्ष्मी नारायण की थोड़ी कम, कृष्ण तो कुमार है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, भक्ति में भी कृष्ण का गायन 16 कला संपूर्ण अवतार के रूप में, राम और बाकी सब अंश अवतार है, अवतारों में भी प्रकार होते हैं, अंश अवतार पूर्ण अवतार, तो कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, भक्ति में भी दश अवतार में से कृष्ण संपूर्ण अवतार है, एकमात्र कृष्ण ही है जो पूर्ण अवतार है, बाकी पश्चिम जो भी है वो पूर्ण अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार एक ही है कृष्ण, संपूर्ण 16 कला, राम को 12 कला बताया है भक्ति में, 12 कला वो जो अवतार है, अंश अवतार है राम, पूर्ण अवतार नहीं है। एस्कॉन वाले लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि कृष्ण के ही ये सारे अवतार है, कृष्ण मुख्य है जो गोलोक में रहता है, गोलोक एक दूसरा धाम है, अभी राम की जब मृत्यु दिखाई है महारामायण में, तो राम तो सीधा विष्णु में विलीन हो गया, सरयू नदी में गया और वहां से विलीन हो गया विष्णु में, परंतु कृष्ण की मृत्यु कृष्ण सरयू विष्णु में विलीन नहीं हुआ है, कृष्ण गोलोक में गया है, अभी गोलोक क्या है, गोलोक में राधा कृष्ण और निरंतर रास चलते रहता है, वो है गोलोक, वैकुंठ में भी एक जगह है जिसको गोलोक कहा गया, कृष्ण की महिमा तो सर्वोपरि है, विष्णु तो बैठा है बस वो क्षीर सागर में अनंतासन में, बस उतना ही है विष्णु, क्षीर सागर चलो हम कहाँ थे, हाँ
तो ये सात भूमिका क्या थी भगवान मुरली
बोलते, सात भूमिका क्या है, सात चक्र है हमारे शरीर में, सात चक्र है, सबसे पहले मूलाधार चक्र नीचे जहाँ पर एक शक्ति होती है, उसके ऊपर है
स्वाधिष्ठान
चक्र, उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, इसके बाद है अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, जब योगी की शक्ति नीचे से निकलकर कुंडलिनी निकल के इड़ा पीड़ा दो नलियों से निकलकर ऊपर 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 जाती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवा सातवीं भूमिका के ऊपर जाती है
आनंद,
तो आत्मा समाधि में चली जाती है,
अच्छा
वो है सातवीं भूमिका, पर तुमको ना तो सुन होके बैठना, ना तुमको बेहोश होना है और ना ही तुमको गुम होना है, सुन गुम बेहोश, तुमको चैतन्य अवस्था में बैठना है, तुमको सुजाग हो बैठना है, ये है सात भूमिका, सात चक्रों से परे जब आत्मा की शक्ति चली जाती है तो निर्विकल्प समाधि को सातवीं भूमिका कहा जाता है, समाधि दो प्रकार की, एक निर्विकल्प एक सविकल्प, निर्विकल्प मतलब संपूर्ण उसमें कुछ नहीं रहता है, आत्मा जैसे कि लीन हो रही है उस तरह का अनुभव है, सविकल्प में फिर भी थोड़े संकल्प चलते हैं, वो भी एक समाधि की अवस्था है, पर निर्विकल्प समाधि जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाया है, एक तोतापुरी नाम का गुरु आया, वो बोलता है मैं तुमको सिखाता हूँ, अभी बोलते चलो ब्रह्म का ध्यान करो, वो ब्रह्म का ध्यान करने जाता है तो उसको देवी दिखती है काली माँ, तो बोलता है मैं तो कर ही नहीं सकता, ये निराकार की साधना है ना, वो दो प्रकार है, एक तो साकार साधना है एक निराकार साधना, तो बोलता है बार बार सोचता है तो बार बार उसको काली माँ दिखती है, तो वो एक कांच लेता है और यहाँ ऐसा करते, बोलते हैं अभी यहाँ ध्यान रखो, तो वो ऐसा ध्यान में लग जाता है कि जो तोतापुरी को 40 साल लगे थे निर्विकल्प समाधि को पाने के लिए, उसको 3 दिन में प्राप्त हो जाती है वो अवस्था, तो वो उसमें आत्मा जैसे सुन्न हो जाती है, जैसे शरीर है ही नहीं, ऐसे ही रहता है पूरा, समाधि जिसको कहते हैं संसार में, वो तो वो है सातवीं भूमिका, पर तुमको सातवीं भूमिका में नहीं जाना, ना तुमको सुन होकर बैठना है, ना ही तुमको शरीर से न्यारा होकर बेहोश हो जाना, ना ही तुमको गुम हो जाना है, तुमको तो सुजाग होकर बैठना है, चैतन्य अवस्था में बैठना है, तुमको तो देखते रहना है आंखें खोलकर, नहीं तो नहीं तो माल
माल सब लोग
चोरी हो जाएगा तुम्हारा माल,
दुकान सब
दुकान खाली हो जाएगी तुम्हारी,
सारा बिक गया होगा जब आंटी बोले नहीं तो।
सुन नमस्कार, एक बार वो जगदीश भाई के किसी क्लास में है, वो कहते हैं कि एक माता आई उनके पास, वो माता ने कहा कि भाई साहब मुझे ऐसा अनुभव होता है योग में, क्या बताऊं। बोले अच्छा क्या होता है अनुभव, तो बोले ऐसा अवस्था में पहुंचती हूँ कि परम धाम भी नहीं रहता है इसमें, शिव बाबा भी नहीं, उसके भी ऊपर मैं चली जाती हूँ। तो बोले शायद वो परम धाम के ऊपर तो निद्रा लोक है ना, शिव बाबा वहां पर पहुंचने के बाद में कुछ नहीं, समाधि की अवस्था है। इसलिए बाबा तुम तुमको सुन हो के नहीं बैठना है इधर, सुझाव होकर बैठना। तो कहां से हम स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग उस स्वर्ग और इस स्वर्ग में ये अंतर है। तो वहां पर संपन्नता का अनुभव है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं स्वर्ग के खजाने में, ऐसी तुम्हारी अवस्था यहाँ होनी चाहिए। नेचुरल इच्छा मात्र अविद्या के संस्कार तुम्हारे यहाँ होने चाहिए। आगे संसार के ये आने वालों का ही अनुभव है सारा, आने वालों का ऐसा अनुभव होता है, तो तुमको भी देखकर ऐसे अनुभव उनको। फिर आगे बाबा ने अचल घर के ऊपर चलाएंगे, अचल घर संसार में, हाँ कोल्ड चोर, जैसी स्थिति जैसी स्थिति जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोर में जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्थिति वैसी हो जाती है। देखो भगवान ने कोल्ड स्टोर कहाँ से कहाँ, आश्चर्य है ना, कहाँ कोल्ड स्टोर, कहाँ मुरली,
कहाँ
बाबा को याद आ रहा
है। हाँ
तो कोई तुमको पूछे कि कहाँ के रहो निवासी हो, तो फलक पे कहते हो मधुबन निवासी हो, तो मधुबन निवासी की जैसे छाप लगी हुई है। फिर पुजारी वो आगे, वो है साथियों के लिए, वो है बहनों से मुलाकात,
पुजारी एक नशा रहता है,
हाँ आएंगे उसके। फिर उसके बाद जैसे संसार में किसी की स्थिति में हलचल होती है तो क्या कहते हैं, अचल घर मधुबन में चलकर अपनी स्थिति को अचल बनाते। तो जो यहाँ रहने वाले उनकी स्थिति अचल है, बाबा पूछ रहे हैं उनकी भी स्थिति अचल रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में मार्गदर्शन करने वाले भी हम, सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले भी मधुबन निवासी ही है। कैसे सेवा, तो मार्गदर्शन करने वाले अर्थात इसके लिए मधुबन का गायन है लाइट हाउस,
एक स्थान पे बैठ
के आएंगे आएंगे आगे 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 आएंगे अभी हम सेकंड पेज फर्स्ट पेज सेकंड पैराग्राफ। तो अचल घर यहाँ पर अनुभव करते हैं, अगर स्थिति में हलचल हो गया तो सोचते हैं कि इसी शुभ भावना से यहाँ आते कि यहाँ आकर अचल हो जाए, स्थिति को बनाने के लिए लोग यहाँ आते और निरंतर इसके लिए यहाँ वाइब्रेशन से तपस्या के, यहाँ के कर्ण कर्ण में तपस्या के वाइब्रेशन से हवाओं में पवित्रता के स्पंदन है। मधुबन की भूमि में यहाँ पर ब्रह्मा के वाइब्रेशन से, यहाँ पर दादियों के वाइब्रेशन से, आदि रत्नों के वाइब्रेशन से, यहाँ निरंतर तपस्या चल रही है उसके वाइब्रेशन। चाहे तुम आगे बोला ना एक जगह समाचार पत्र पत्र व्यवहार से किसी को बताओ भी नहीं, क्या कहा वो पत्र पत्र भेजते भी नहीं, सेवा समाचार, सेवा समाचार का पत्र ना भेजते फिर भी वाइब्रेशन तो ऑटोमेटिक करते हैं। यहाँ तक बाबा ने एक संदेश है 69 का अव्यक्त बाप दादा का बाबा के लिए कि ब्रह्मा ने ब्रह्मा के शरीर के पांच तत्व, ब्रह्मा के शरीर के पांच तत्व प्रकृति के तत्व में समा गए हैं और वो अभी प्रकृति को पावन कर रहे हैं। बाप दादा का संदेश 69 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद
प्रकृति को पावन बना रहे हैं,
वो तत्व भी पावन बना रहे हैं
शांति स्तंभ से,
शांति स्तंभ से। यहाँ तक मुझे किसी ने बताया बाबा की जो राख है वो थोड़ी वो कमरे में भी नीचे रखी हुई है,
बताया जाता
है रखी होगी, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। तो सब जगह वाइब्रेशन से पावरफुल वाइब्रेशन, चाहे वो हिस्ट्री हॉल हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो कुटिया हो, चाहे शांति स्तंभ हो, तो आदि आदि पिता के भी वाइब्रेशन से यहाँ आदि रत्नों की तपस्या यहाँ की हुई है। अभी तपस्या चालू ही है, कौन सा समय है जिस बाबा के कमरे में कोई ना हो, ऐसा कोई टाइम है? चलो 10 बजे के बाद कोई नहीं, सिक्योरिटी वाले तो हैं कुछ तो बैठते ही होंगे, 2 बजे तो आ ही जाते हैं बाकी लोग थोड़े थोड़े
11:30
तक ले लो, पर बाद में सिक्योरिटी वाले भी बैठते हैं। निरंतर तपस्या की वाइब्रेशन यहाँ हो रहे हैं, और संसार में आत्माएं विकारी है, यहाँ तपस्या चल रही है। ये एकदम आश्चर्य, यहाँ का महत्व पता नहीं चल रहा है हमको, पर वो जो प्यूरिटी की पावर है ना, संसार विकारों का आकर्षण इतना ज्यादा है कि रह नहीं सकते अपवित्रता के बगैर, और यहाँ पवित्रता के वाइब्रेशन जा रहे हैं। इसके लिए हमको बाबा कहते हैं ना, तुमको नहीं जानते जितना मैं तुमको जानता हूँ, तुम अपने आप को उस नजर से नहीं देखते जितना मैं तुमको उस नजर से देखती हूँ। तो अचल घर है ये मधुबन। उसके बाद में बाबा ने, हाँ वो फिर सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले भी तुम हो, एक दूसरे के सहयोगी भी कैसे बनते हो, मन वचन कर्म से एक दूसरे के सहयोगी बनते हो। फिर बाबा ने आगे चला है, एक साल का जो होमवर्क दिया है पुराना, क्या क्या किया एक साल में, बाबा ने पूछा ना उसने कितना उमंग से, सच्ची दिल से, स्नेह से बाप का अनुभव सुनाते हो तो कईयों का परिवर्तन हो जाता है। एक का परिवर्तन अनेकों का परिवर्तन कर देता है। कई कोई ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि उसका अनुभव सुनते सुनते लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। होता है ना ऐसा अनुभव, कोई ऐसा, कोई एक है भाषण देने वाले, एक घंटा भाषण किया, बहुत पावरफुल भाषण, लोगों ने सुना और भूल गए। अच्छे स्पीकर भाषण करते हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण करते हैं। फिर कोई एक दूसरा आया जिसको भाषण भी नहीं करना आता, ना हिंदी बोलना आती है, पर वो अनुभव ऐसे सुनाता है 15 मिनट की लोगों के दिलों में छप जाता है, लोगों के संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं उससे, ऐसा अनुभव सुना दिया किसी ने। ऐसा त्याग वैराग्य और तपस्या का अनुभव कोई सुना दे, अनुभूतियों का अनुभव, तो वो तो कौन महान हुआ, वो पहला वाला कि दूसरा वाला? पहले वाले के तो वाह 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 हो गई, वाह वाह हो गई हॉल से बाहर खलास। पर ये न बोलने आता है न हिंदी आती है, रुला दिया आत्माओं को। तो ऐसी जो चीजें होती है, इसके लिए बाबा ने कहा एक का परिवर्तन अनेकों को परिवर्तन किया। तो ऐसे एक साल में ऐसी हाई जंप दी है, एक साल में ऐसी लिफ्ट की गिफ्ट, ये यहाँ पूरा हुआ। फिर अभी ये पूरा दूसरा टीवी स्टेशन, क्या बोला इसके बारे में, मधुबन है टीवी स्टेशन, एक स्थान का चित्र अलग अलग, तो चारों तरफ टीवी लगे हुए और ये है टीवी स्टेशन, तो यहाँ जो भी कुछ कर रहा है वो सब जगह दिख रहा है। ऐसे मत समझना कि हम जो कर रहे हैं दिख नहीं रहे। साइंस के साधन क्या करते हैं, संकल्प की गति, मनसा की स्थिति को चेक करते, वैसे ही तुम्हारे संकल्प की गति और मनसा की स्थिति चारों ओर फैलती है। इसके लिए एक एक संकल्प पर अटेंशन, इसमें अलबेलापन नहीं होना चाहिए। दोनों सेवाओं के जिम्मेवार बाबा ने आगे बोला ना, मनसा कर्मना सेवा तो कर रहे हो, पर मनसा सेवा भी करना है, तो इसके ये डबल जिम्मेवारी है तुम्हारे ऊपर। और क्या बोला यहाँ पर, तो मधुबन निवासी एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष संकल्प को लेकर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन चारों ओर फैला सकते हैं। हाँ मनसा सेवा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्थान ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सेवा केंद्रों वालों की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मधुबन वालों की उससे ज्यादा है। खाना पीना सोना इसे कुछ इससे होगा तो ये बोझ है, खाली स्थूल सेवा भी कर रहे हैं वो भी खाली बोझ है। यहाँ तुमको अपने मन के संकल्पों को इतना महान बनाना है कि विश्व को वाइब्रेशन देना है। अगर ये सेवा हमसे नहीं हो रही है यहाँ रहकर तो बोझ है, तो बोझ यहाँ रहकर बाबा ने साकार में कहा। अगर बुद्धि बाहर भटक रही है तो बाबा कहते वो खोखले है, उनकी मुर्दे जैसी शक्ल है, एक मुर्दे ने यहाँ तक बोला है। तो यहाँ रहने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संसार में रहने वालों से कई गुना अधिक है। केवल सेवा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इससे कुछ नहीं, महान सेवा करनी है। सबसे महान सेवा है वाइब्रेशन की, एक स्थान पर रहकर ही विशेष संकल्प द्वारा चारों ओर वाइब्रेशन फैला सकते हो। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, कौन सा
जैसे टीवी की बात,
टीवी तो हो गया दूसरा उदाहरण, उदाहरण के अंदर उदाहरण,
उदाहरण के अंदर उदाहरण,
जैसे कोई स्थूल वस्तु की खुशबू चारों ओर फैलती है, वैसे तुम्हारे संकल्प की खुशबू, संकल्प के वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैले, ये कार्य करना है। वापस सकाश तो ना साक्षी होकर कल्याणार्थ है, भटकना अर्थात यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ ये खाऊं वो खाऊं इधर जाऊँ इसको मिलूं उसको मिलूं, नए कॉन्टेक्ट क्रिएट करना, संबंध, किसी को बहन किसी को भाई किसी को माँ किसी को कुछ बनाना संबंध ने। यहाँ बाबा ने कहा है तुमको सबको भूलना है, उस दिन मुरली थी ना कल परसों, तुम यहाँ बैठे जो मित्र संबंधियों को याद करते अब उनको भूलो। अंत मती तो गति का जो गायन है वो क्या है, चेक करो कि मेरी बुद्धि किस किस व्यक्ति में जाती है और किस किस वस्तु में जाती है, क्योंकि अगर इसी समय यही अगर मृत्यु है तो किस स्थिति में जा रहे हैं। अंत मती तो गति, कोई भी याद ना है संसार का, तो एक ही स्थान पर बैठकर एक ही संकल्प द्वारा सारे विश्व की सेवा की जा सकती है, परंतु वो संकल्प फिर ज्वालामुखी योग किसको कहें भगवान, इसी को कहें। ज्वालामुखी योग में क्या होता है, एकाग्रता चाहिए, जितनी ज्यादा एकाग्रता उतना ही ज्वालामुखी योग, बिना ज्वालामुखी योग के विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो ज्वालामुखी योग का आधार है एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार है एक व्रता, जिसकी बुद्धि कई जगह भटक रही है वो एक व्रता नहीं हो सकता। बाबा ने तो कहा है एक बाप के सिवा तुम्हारी बुद्धि का ही नहीं जाना चाहिए, एक बाप के सिवा तुम किसी को याद करते हो तो ये भी विकर्म है। निरंतर बुद्धि ज्ञान के मनन चिंतन में लगी रहो, ज्ञान के अतिरिक्त तुमको और कुछ मनन करना ही नहीं है। वाहियात बातें, यहाँ वहां की बातें, किसने क्या कहा किसने क्या बोला, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने यहाँ तक एक साकार मुरली में कहा हुआ है, यहाँ अगर तुम रहते हो तो यहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई मधुबन में रह के जोर से आवाज करता है, साकार महावाक्य, अगर कोई यहाँ रह के आवाज करता है तो वो बाप को पसंद नहीं, आवाज कर्म करते हुए आवाज। दूसरों को ऐसा लगे कि यहाँ तो जैसे शांति लगी पड़ी हुई है, उसी मुरली की आगे की लाइन है, दूसरों को ऐसा लगे कि यहाँ तो जैसे शांति लगी पड़ी हुई है, कर्म करते हुए भी कोई आवाज अगर करता है वो भी बाप को पसंद है, साइलेंस, साइलेंस में जो पावर है वो आवाज में कहा है। अंतर्मुक्ता का सुख जिसने ले लिया उसको बाह्य मुक्ता नीरस लगती है, वेस्ट लगता है। अध्यात्म का आधार ही अंतर्मुखता है, अध्यात्म का आधार ही एकांत है। अभी परसों बाबा ने याद किया ना पादरियों को, एकांत यहाँ बहुत अच्छा है, एकांत में वो माला फिरते एक दूसरी तरफ देखते भी नहीं है, पहाड़ी पर जाकर एकांत में, उसी मुरली में बाबा ने बोला ना पहाड़ी पर जाकर एकांत, फिर एक जाए दूसरा आए, एक दो तीन जाए, उसी दिन बोला ना। तो कर्म, कर्म को भी योग बनाना, एक पंथ दो काज, पहरे वालों को याद किया उस दिन, एक पंथ और दो काज, काज दो पंथ एक, एक तीर से दो निशाने, तो वो यहाँ करना है। तो वाइब्रेशन फैलाना है, जैसे खुशबू चारों ओर फैलती है वैसे। फिर क्या कहा उसी वहां पर बाबा ने,
इसके लिए एक लक्ष्य
वो आगे है, फिर विशेषताओं के बारे में कहा, तो तुमको अपनी विशेषता दिखानी है यहाँ पर बोला, विशेष आत्मा हो तो विशेषता दिखानी है यहाँ पर, और भी एक दो लाइन है वहाँ पर, बीज में बीज आगे आगे बहनों के साथ। फिर यहाँ पे बाबा ने मधुबन स्वर्ग भूमि में हर आत्मा संपन्न मूर्त थी, फिर आगे है कि इसके लिए क्या, तो इसके लिए लक्ष्य क्या रखना है, देने का, दाता संत का, किसकी संतान हूँ, देने वाले दाता का बच्चा हूँ, तो देना ही लेना है, जो देंगे जो संपन्न होंगे वही देंगे, जो संपन्न नहीं वो दे नहीं सकेंगे, तो मास्टर दाता है। बाबा ने एक वर्ष है 1994 जो वर्ष है वो किस रूप में मनाया गया था, नहीं 94 महादानी वरदानी वर्ष, 31 दिसंबर 1993 को बाबा ने होमवर्क दिया था कि अगला जो वर्ष है वो महादानी वर्ष के रूप में मनाओ, जिस वर्ष में केवल तुमको देना है, अखंड महादानी केवल देना है। तो एक पूरा वर्ष बाबा ने इस पर मुरलियां, उसमें बहुत सारी मुरलियां चली उस साल में, हाँ मना देते रहो देते रहो हर रूप में ज्ञान गुण शक्तियां, तो हर वर्ष के लिए कुछ ना कुछ देता है बाबा। अभी भी ये वर्ष कौन सा बोला, महापरिवर्तन वर्ष, ये है ना। आगे
दातापन की,
हाँ तो दातापन की भावना होगी तो क्या होगा, निर्विघ्न स्थिति और इच्छा मात्र अविद्या, अनुभव स्वतः ही होगा। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, विस्तार और क्या कहा इसमें निकलेश भाई,
मछली और
विस्तार को ना देखना, किसको देखना, सार को देखना, और बातों को ना देखना, एक बिंदु को देखना, उदाहरण मछली को, तो किसको नहीं देखना, मछली को नहीं देखना, आंख को भी नहीं देखना, आंख की बिंदी को देखना। सबसे बड़ा काम, मुश्किल काम, भारी मंजिल है। एक भी विकारी संकल्प तुम्हारे अंदर ना हो तब कर्मातीत अवस्था होगी, मंजिल है। क्रिमिनल आए टूट जाए, क्रिमिनल आए टूट जाए तब कर्मातीत अवस्था कहा जाए,
तीन चार
ये है कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण अवस्था सबसे प्रतीति कहा जाए।
मिनिस्टर आए
थे, मिनिस्टर भी कितना पर ईमानदार है, ऐसा कोई बोलता है मिनिस्टर भी कितना ईमानदार है कि जो भगवान के सामने भी कहता है, बाबा को बोल रहा है कि मेरी क्रिमिनल आय जाती है, कितनी सच्चाई है उसमें, सच्चाई को भी देखो। बाबा ने उसको युक्ति बताई, भाई भाई की दृष्टि। आगे तो विस्तार को ना देखना, और बातों को ना देखना, सार को देखना, बाप को देखना, देखना भी और सुनना भी, एक बाप को देखो और एक बाप को सुनो, सुनो भी एक कोई और देखो भी एक कोई, दूसरी बातों को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अगर ऐसी अवस्था रहेगी तो बाबा ने क्या कहा, फिर हाँ दो बातें होगी वहां पर, अगर किसी की ऐसी अवस्था है तो विघ्न, अगर नहीं है ऐसी अवस्था तो विघ्न आएंगे, अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो जो अंतिम परीक्षा है जिसमें भयानक दृश्य, विकराल दृश्य, हलचल की भयानक आवाजें, उसमें वो सदा के लिए फेल हो जाएगा। अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो फेल मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बोला ना विकराल मौत का बाजार गर्म होगा, सब इकट्ठा हो लॉट में ऊपर जाएंगे, और लॉट में इकट्ठा जाते तो कैसा जबरदस्त दृश्य होगा, रक्त की नदियां बहेगी। रक्त की नदियां क्या होती है, रक्त की नदियां, ये भारत में ऐसा विनाश होगा, पुणे नायक खेल विश्व, भारत के बाहर ऐसा विनाश नहीं होगा, वहां तो एक सेकंड में खत्म, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से खून की नदियां, रक्त की नदियां थोड़ी बहती है, यहाँ ग्रह युद्ध यहाँ होगा, यहाँ रक्त की नदियां बहेगी, तड़प तड़प की आत्माएं यहाँ मरेगी, उधर नहीं, विश्व में नहीं, इधर भारत में, क्योंकि पतित किसने बनाया, भारत को, भारतवासियों ने। तो ऐसे दृश्य में बाबा ने कहा देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, वहां पर हमारी ऐसी स्थिति हो कि एक की याद और एक की लगन में मगन, तब कहीं सेफ रहेंगे, तब कभी पास होंगे नहीं तो फेल। अभी से ये विशेष प्रैक्टिस करो, मैंने कहा बहुत, एक दो दिन एक दो सालों का भी नहीं है, लंबे समय का अभ्यास है, बहुत लंबे समय का, सब कुछ समाप्त होते हुए देखने का अभ्यास है, एक ऐसा भी एक दृश्य है योग का कि मैं अकेला रह गया हूँ, बाकी सब खत्म, अभी बस मैं जाने वाला हूँ, अंतिम आत्मा हूँ, अभी जाने वाली हूँ, तब तक देख रहा हूँ बस लाशें ही लाशें बिछी है, कोई नहीं, सब खत्म, कौन अब कहाँ जाना है।
सम्राट अशोक का तो इसी बैराग आए थे
कलिंग के युद्ध के बाद, ऐसा युद्ध तो ऐसा ही बैराग अभी आ जाए। स्मशानी वैराग्यों को भी याद किया ना उस दिन दादा ने, स्मशानी वैराग्य वहां जाते हैं तो लगता है एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, अभी इस संसार में बचा क्या है, और घर जाते हैं और ओम शांति सब कुछ अल्पकाल का वैराग्य। इसके लिए स्मशान निरंतर हमारे हृदय में प्रज्वलित हो, निरंतर आत्मसात हो, निरंतर वो स्मृति बनी रहे, बस जाग धड़क रही मरगट की ज्वाला,
तो ऐसी
सारे का आधार है आंतरिक वैराग्य। आंतरिक वैराग्य कम हुआ कि संसार से आसक्ति तुरंत उत्पन्न हुई, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ इसको देखूँ उसको देखूँ, यहाँ घूमने जाऊँ वहाँ घूमने जाऊँ, सारा विश्व यहाँ आ रहा है, कहाँ जाना है, अब सेवा की अलग बात है और भटकने की बात है, एक है सेवा के लिए पर आंतरिक इच्छा है भटकने की, नाम है सेवा, इच्छा है भटकना, बताने के लिए सेवा और अंदर से इच्छा भी बहुत है, एक है केवल सेवा के लिए जाना, वो अलग बात है, वो बहुत ऊंची अवस्था है, उसके साथ साथ दूसरी छोटी छोटी इच्छाएं जुड़ी हुई थी, रिफ्रेशमेंट तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, बादल यहाँ आते भरने और जाकर संसार में बरसो, वो ठीक है, वो अपने अपनी अपनी हेल्थ के हिसाब
से,
कारण 100 दिए जा सकते हैं जाना की, और ज्ञानी आत्मा अगर कोई कारण देते तो उसको तर्क वितर्क नहीं किया जाता, ज्ञानी आत्माओं के साथ कोई बहस थोड़ी की जा सकती की जा सकती है, ज्ञानी को ज्ञान थोड़ी सुनाया जा सकता है, अज्ञानी को बता सकते हैं अरे ये श्रीमत नहीं है, ज्ञानी को थोड़ी श्रीमत बताएंगे, जो बाजू में बैठा था मुरली क्लास में, सुबह ही बाजू में बैठा था, बाबा ने कहा मीठे बोलो मीठे वचन, दोपहर में एकदम कड़वा बोल रहा है, उसको थोड़ी ना जाके बताएंगे कि बाबा ने ऐसा बोला, ज्ञानी को नहीं ज्ञान दिया जा सकता, अज्ञानी को दिया जा सकता, तो मुश्किल ये तो समझने की बात है, बस बाबा से बच्ची और बाबा से कहती है बाबा माँ बाप तंग करते हैं शादी करे, ऐसी बच्ची अगर बाप को पूछते तो बाप उन्हें रीढ़ बकरी कहते हैं, अभी पूछ रहे हो तो इच्छा है, माँ बाप तंग करते हैं शादी करे, बाप से पूछते हैं तो बाबा कहते भले करो, अरे बाप की याद में अगर सर भी कट जाए तो भी ऊंच पद पाओगे, यहाँ तक बोल के रखा है, बाबा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, बाबा तो वैसे बिना बताई सब कुछ बता देते हैं, पूछने की दरकार ही नहीं है बाबा,
तो
हाँ चलो आगे कहाँ थे हम, वहाँ हो गया फिर तातापन का हो गया, फिर विस्तार, फिर ये हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पूरा हुआ, फिर साकार रूप में किसका अनुभव हो, आकारी स्वरूप का अनुभव, ब्रह्मा का उदाहरण दिया, शरीर तो वही था परंतु सबको क्या अनुभव होता था, फरिश्ता रूप का अनुभव होता था, अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव होता था, तो तुम्हारी जैसे आदि में भी स्थिति कर्म साधारण परंतु स्थिति अति श्रेष्ठ, चाहे बर्तन चाहे धोबी घाट चाहे भंडारे में हो, परंतु देखने वाले क्या कहे, ये इतनी स्थिति हमारे इष्ट देव और साधारण इनका कर्म परंतु स्थिति अति श्रेष्ठ, साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, फरिश्ता दिखाई दे, इष्ट रूप दिखाई दे, महान आत्माएं दिखाई दे, जैसे कोई शहजादी आती है तो कहती है ना ये तो महाराजा और खाना बना रहे हैं, आश्चर्य खाती है बाबा, उसको भी आश्चर्य लगता है, और उदाहरण दिया अर्जुन और कृष्ण का, कृष्ण का 11वां अध्याय, जब पूर्ण विश्व रूप दर्शन कराया तो उसने क्या कहा बाद में, इतना महान इतने श्रेष्ठ और मेरे सामने सखा रूप में, साधारण सखा रूप में, और उदाहरण दिया बाबा ने अपना खुद का, जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुए वैसे ही तुमको भी अंत में सबको ऐसे साक्षात्कार कराओगे, और एक उदाहरण दिया जैसे ब्रह्मा को कृष्ण और ब्रह्मा का साथ साथ साक्षात्कार होता था, तो खुली आँख से सबको साक्षात्कार कराओ,
खुली आँख से
बाबा ने कहा ना, उनकी खुली खुली आँखों से उनको साक्षात्कार हो जाए, इतने सारे उदाहरण दिए वहां पर बाबा ने, दूसरे लोगों का, शहजादियों का, ब्रह्मा के खुद के जीवन का, कृष्ण अर्जुन का, और ब्रह्मा और कृष्ण का, इतने उदाहरण दिए सारे। तुमको कोई देखे तो क्या दिखे? साक्षात्कार मूर्त। कोई देखे तो क्या दिखे? इष्ट देव। कोई देखे तो क्या दिखे? परिष्ठा रूप। क्या देखे तो क्या दिखे? आकारी रूप। कोई देखे तो क्या दिखे? महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा दिखे। और ये कब होगा? वापस उसी पे आ गए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, लक्ष्य एक शिव बाबा को देखो, एक शिव बाबा को सुनो, और बातों को देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं। ये तब होगा, तब मधुबन को जादू की नगरी कहा जाएगा, तब कहा जाएगा मधुबन को जादू की नगरी। मधुबन से जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो मधुबन शीश महल बन जाएगा, अव्यक्त महावाक्य है। जब मधुबन शीश महल बन जाएगा और कोई आत्मा, विकारी आत्मा यहाँ आएगी और कहेगी कि मैं अपना सर काट के भी दे दूं, फिर भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। 6/12/69 की मुरली है, 6 December 1969। अगर कोई कहे कि मुझे अंदर आने दो, अगर सर भी काट कर देने को तैयार है, शीश भी काट कर, तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। ऐसी शीश महल बन जाएगा, कोई भी विकारी आत्मा यहाँ नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर भी जो कच्चे कच्चे है, वो भी बाबा ने कहा अंत में यहाँ केवल पक्के योगी रहेंगे बस, बाकी जो ढीले ढाले है, इधर उधर जिनकी बुद्धि भटकती है, यहाँ पे सब स्पष्ट दिखाई देगा एक दिन, किसमें कितने दाग है। किसी की सेवा छुप नहीं सकती और किसी के अवगुण भी छुप नहीं सकते, किसी की कमजोरी भी नहीं छुप सकती, सब एक दिन स्पष्ट दिखाई देगा। शीश महल हो जाएगा, हुआ कि हुआ?
हुआ ही पड़ा है,
हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा बात कर रहे हैं शिव शक्तियों से, मधुबन की बहनों से। क्या कहा मधुबन की बहनों से? सब में विशेषता है, विशेषता हो करके तो यहाँ आई है शिव शक्ति, विशेषता है करके यहाँ मधुबन निवासी बनी है ना, बिना विशेषता के यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। ब्राह्मण परिवार में आए और विशेषता ना हो ही नहीं सकता। और यहाँ तक बाबा ने यहाँ फिर याद किया है वो पुजारियों को। क्या है, किस लिए याद किया पुजारी को? तीन उदाहरण है यहाँ, चार उदाहरण है। तो ये सब जो है तुमको दो संघ, एक श्रेष्ठ भूमि का संघ और तुम्हारे संगी साथी महान श्रेष्ठ पाठधारी। तो जैसे पुजारी को भी नशा रहता है, पुजारी भी अपने आप को महान समझता है क्योंकि उसका जड़ मूर्तियों से समीप संबंध में होते हैं। तो वो तो है, यहाँ पुजारी की बात नहीं है बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हारे चैतन्य संगी साथी है, इसमें श्रेष्ठ साथी है। पर ऐसा है कि गड़बड़ है थोड़ा कि नहीं है मानो तो इसको इमर्ज रखना पड़ेगा, चाहे कैसा भी कितना भी किसका संस्कार हो, परंतु उसमें कुछ तो विशेषता है। सबसे पहली विशेषता बाप को पहचाना, दूसरी विशेषता, तीन मुख्य विशेषता है ब्रह्मचर्य, ये एक ही धारणा उसको संसार से ऊपर कर देती है बस। उसने ब्रह्मचर्य पवित्रता को पालन किया ना, संसार से वो कई गुना ऊपर चला गया बस। चाहे वो रोज झगड़ता है, ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर अहंकार क्रोध क्या कुछ नहीं है, परंतु एक ब्रह्मचर्य ही उसको ऊपर कर देता है संसार से। और उसने अपने जीवन को समर्पित किया है परमात्मा के लिए, मनसा वाचा कर्म, ये ऐसी विशेषता है कि उसको संसार से ऊपर कर देती है। अभी उसके अंदर फिर हमारे हिसाब किताब, इसमें बाबा ने बोला ना हिसाब किताब तो है, वो तो चुप चुप करनी है, पर हर आत्मा का पार्ट विशेष है। तो ये हिसाब किताब जाने वाले नहीं है, वो तो रहेंगे जन्म जन्म, जिसको दुख दिया है वही आया है आसपास डिपार्टमेंट में, जिससे हमारी शत्रुता है वही हमारा इंचार्ज बना है, वही हमारे साथ है नीचे है, जन्म जन्म जिससे लड़ाई की है वही आया है ना, बराबर है ना। फ्रेंड सर्कल में कौन आया है जो हमारे जन्म जन्म के जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे हमारे, वही यहाँ अभी इंचार्ज बन के, वही नीचे जूनियर बन के, वही आए। तुमने किसी की जमीन हड़प ली होगी, उसके परिवार सब मर गए होंगे, तुम साहूकार होंगे, वो कुछ होगा, अभी हम कहीं के राजा होंगे, वो कहीं का राजा होगा, हमने उस पर चढ़ाई कर दी और उसको निर्वासित, पूरा देश निकाला कर दिया होगा, सारा जीवन समाप्त हो गया होगा उसका, और वो पूरा मर एकदम, उसके सामने उसकी बीवी पत्नी सब मर गए और तड़प तड़प के वो मर गया, अभी वो यहाँ आया है हमारा बन के कुछ तो छोड़ेगा क्या, महान तो है। तो हिसाब किताब तो चुप चुप करनी ही है, परंतु उसका विशेष भाग महान आत्मा है, इसको भूलना नहीं। फिर उदाहरण दिया बाबा ने, जो भी विशेषता है उसको कार्य में लगाओ। दो उदाहरण दिए, एक है बीज और भूमि। भूमि एक बीज को भूमि में डालो तो एक का लाख गुना फल निकलेगा। तो तुम अपनी विशेषता रूपी बीज को कर्म रूपी या सेवा रूपी भूमि में डालो तो एक का लाख गुना निकलेगा। पर इसका तरीका आना चाहिए, बाबा ने कहा बीज बोने का तरीका आना चाहिए कि जो भी विशेषता है उसको सेवा में लगाओ। अगर वो विशेषता को खुद ही लेके बैठ जाएगा मुझे ये विशेषता है, तो अहंकार आ जाएगा, उससे पतन होगा। सेवा में लगा दो उसको, बस सेवा में लगा दी तो सफल हो जाए। एक ये उदाहरण, दूसरा और एक उदाहरण,
कोई विशेषता का अनुचित उपयोग भी फायदा उठा लेते
हैं। हमारी विशेषता
जैसे मान लीजिए आप हमेशा पर्ची कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी देख लेते हैं मरीज की भी, आपको चलते चलते दिखा दे अर्थ में आपके पीछे पड़े रहेंगे, उन्हीं तो अनिश्चित है। तो विशेषताएं कहाँ गाड़ी, ये हमें थोड़ा होना चाहिए।
और एक उदाहरण दे रहे, लोहा और पारस। तो लोहा जब पारस को लगता है तो पारस लोहा भी पारस बन जाता है। तो वैसे तुम अपनी विशेषता को, स्नेह को, कोई गुण को अगर सेवा में कर्म में लगाते हो तो उसका कई एक का लाख गुना फल मिलता है, अनेक समय के लिए फल मिलता है बाबा ने।
लेकिन एक बार बाबा बोला था ऐसा, पारस के संग लोहा भी पारस नहीं बनता है, तुम्हारे संग में जो आता है वो पारस बनता है।
पारस मणि क्या है, कोई है पत्थर कि जिसका कुछ लगने से वो पारस बन जाए? ये काल्पनिक पत्थर है, पारस कोई है ही नहीं, किंवदंती है, ये तो एक काल्पनिक पत्थर है। पारस ये शास्त्रों में है, पुराणों में आया हुआ है, पर पारस कोई मणि है ही नहीं। पर एक जगह है ग्वालियर में, गुना नाम का एक गांव है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में गुना नाम का एक गांव है, वहां पर एक किला है बंजरगढ़, वो किले में आज भी वो पत्थर है ऐसा कहते हैं। क्योंकि वहां का जो राजा था 17वीं शताब्दी में, वो क्या करता था, अपनी प्रजा से लोहा लेता था कर में, और फिर उसके पास वो पारस था, उसमें वो सोना बना के रख देता था सब अंदर। तो कई लोगों ने रिसर्च किया, कई लोगों ने ढूंढा, पर अभी तक मिला नहीं। पर वो कहते उसी किले में है, वो बंजरगढ़ नाम का किला है, गुना नाम का गाँव है ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ है वो। तो ऐसे कथाएं है ये, पर पारस कोई पारस मनी कुछ है ऐसा कुछ है नहीं। बाबा कहते तुम पारसनाथ बनते हो, अभी तुम पत्थर बुद्धि हो, फिर तुम पारस बुद्धि बनते हो। ये बाबा तो अपने हिसाब से कहते, बाबा कहते राहु की दशा, केतु की दशा, बृहस्पति का भी, राहु केतु कुछ है ही नहीं, ग्रह ही नहीं है कोई। तो ये तो बाबा जस्ट रेफरेंस लेता है, अपने काम से अपने मतलब से यूज करता है, छोड़ देता है। वो थोड़ी ना है, वो जरूरी होना है उसका, वो जरूरी नहीं है कि वो है। वो अपना बाबा उठाता है, नव रत्नों की एक अंगूठी, आठ रत्नों की अंगूठी, अभी साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ है नहीं, पर बाबा भी यूज करता है उसको। बाबा भी इसका विरोध तो करेगा नहीं कि ये होती नहीं अंगूठी कोई, ये सब ऐसी फालतू है ज्योतिष, ये सब ऐसा कुछ बोलेगा नहीं। वो भी कहता है ठीक है, अपने रीति से वो यूज करते हैं। हाँ, ये ऐसी बात है। तो और क्या बोला आगे, तो लोहा पारस बीज और वो, तो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ। और श्रेष्ठ संग श्रेष्ठ भूमि, तो पास रहने वाले पास के डोनर बने हो, जो समीप है उनका प्रारब्ध क्या है, श्रेष्ठता से इसी श्रेष्ठता को सामने रखो। तो इसी श्रेष्ठता को अगर सामने रखो तो व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त तो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ बाबा ने पूरा किया। और भी कोई पॉइंट रह गई जी, ये सारी हो गई, हो गई। ये बहनों का ही चल रहा था। वरदान माया का विकराल रूप, तो तुम वेलकम करते हो कागज का शेर। अरे शेर जैसी भी ताकत नहीं, बिल्ली जैसी भी ताकत नहीं है, और तुम उसको शेर समझ के घबराते हो, क्या क्यों कैसे, सोच के उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हो। वो कुछ है ही नहीं, तो माया जीत तो समान है, मैं माया जीत आत्मा हूँ। स्लोगन, मैं सहनशील आत्मा हूँ, क्या करती है संचित आत्मा, भाव स्वभाव में जलती नहीं है, इधर से सुनकर व्यर्थ को उधर से निकाल देती। तो आज की पूरी मुरली से सारे सामान कौन कौन से हैं? मैं मधुबन निवासी हूँ, सबसे पहला तो ये डबल स्वर्ग का अधिकारी हूँ, लाइट हाउस, वैसे तो मधुबन के लिए लाइट हाउस है पर मैं लाइट हाउस हूँ, फिर चलता फिरता चलता बोलता चलता फिरता रमता लाइट हाउस हो तुम कल, और मैं विशेष आत्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ये इष्ट देव हूँ, फरिश्ता हूँ, मास्टर दाता हूँ, फरिश्ता हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, मायातीत आत्मा हूँ, और साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, विशेषता संपन्न आत्मा हूँ, तृप्त आत्मा हूँ, भरपूर आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, कोई चीज की कभी कमी नहीं, इच्छा मात्र अविद्या, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम बेहद का आंतरिक वैराग्य। मुझे कोई कुछ दिन पहले कोई भाई पूछ रहा था यही यज्ञ से कि आप ना मेरे साथ विदेश चलो, मैं आपका सब कर देता हूँ, सब पूरा आपका मैं कर दूंगा, आप आपको जाना ही है मेरे साथ। तो मैंने सहज बोल दिया कि मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। फिर कुछ दिन बाद मुझे आया मेरे पास और कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी, यहाँ रह के भी मुझे इस उम्र में, अभी थोड़े बुजुर्ग है तो यहाँ वहां जाने की इच्छा थी, अभी मुझे कोई इच्छा नहीं है जाने।
तो उसके बाद आपने
योग कर दिया वो कल ही मिले मुझे
उसके हाथ के वैराग्य के बीज डाल दिए, उसकी देह के
तृप्त आत्मा, तृप्त अर्थात संपूर्ण तृप्ति हो गई। हाँ, जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा, आखिरी चौपाई लिखी, पावा परम विश्राम, ये लिख लिया, अभी मेरे मन को परम विश्राम प्राप्त हो गया, अभी और कोई इच्छा नहीं, ऐसी स्थिति हो हमारी। अगर सेवा के लिए जाना है और परिस्थितियां ऐसी बने वो अलग बात है, एक है खुद से इच्छा करना, यहाँ जाऊं वहां जाऊं ये करूं वो करूं, हाँ ठीक है वो भी ठीक है, सामने से बुला रहे मैं वही बोल रहा हूँ, एक है खुद ही सब कुछ करना और खुद ही भटकने की इच्छा अंदर, वो नहीं हो। एक हफ्ते में क्या क्या बोला, 5-10 मिनट है हमारे, मन का घोड़ा तूफानी घोड़ा है, तेज भागने वाला घोड़ा है, तो श्रीमत की लगाम से कैसी हो, मजबूत हो और टाइट हो, दो शब्द यूज किए बाबा ने, श्रीमत की लगाम मजबूत टाइट, अगर मजबूत टाइट नहीं है तो मन का घोड़ा भागेगा, इधर उधर जाएगा, चंचल होगा,
तंग करेगा,
साइट सीन तो बहुत है ना इस ड्रामा में, इतने हैं कि बात मत पूछो। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी माया इस समय कौन सी है? मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल और SMS, इसी में लगे रहते हैं।
एक में सारा कुछ
है,
हो जाएंगे आगे। बाबा ने कहा है तुम्हें कोई भी नए बंधन बनाने नहीं है, ये नए बंधन बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नए बंधन बनाने नहीं है, बाबा ने श्रीमत दे दी है, तुम्हें नए बंधन कोई भी बनाने नहीं है। क्यों नहीं बनेंगे? तुमको SMS आते रहते, व्हाट्सएप आते रहते, फेसबुक नए फ्रेंड्स बनाते रहते हो, क्यों बनाने कोई जरूरत है? बाबा ने बोला है बनाने के लिए, बाबा ने बोला है तुमको, तुम्हारी बुद्धि एक को देखो एक को सुनो, बस ये बोला है। अभी तुम बोलते हो कि नहीं इसमें सब ज्ञान का आता है, अरे ज्ञान का आते पढ़ते कहाँ हो, पढ़ते हो क्या? आए बरबर सामने भेजो, आए बरबर भेजो, इधर आया नहीं तो भेजो, यही काम चालू है। कौन पढ़ रहा है? जो SMS ईमेल भेजने वाले हैं उनको पूछो, खुद वो क्लास सुना जो भेजा तुमने? नहीं सुना, केवल भेजने का काम है। कुछ पहले स्व कल्याण, स्व वास्तव में स्व उपक वो भी है पर स्व कल्याण पहले करना है, ये छोड़ दो, बुद्धि भटकती है उसमें, ये जो भी है बुद्धि तुम्हारी बाप के अतिरिक्त कहीं और जा रही है, तो इसको श्रीमत नहीं कहा जा सकता है। इसको खुद सोचो, क्या ये श्रीमत है? नहीं है, बाबा ने कहा ही नहीं है कहीं, श्रीमत ही नहीं है। काम काज करते बाप की याद रहो, पहरे वालों को याद किया,
बाप को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती।
डिसरिगार्ड है बाप का, ये
बोला बाप का कोई,
बाप का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, ये तुम अपना डिसरिगार्ड करते हो। और
भारत का बेड़ा डूबा हुआ है,
बाप आए हैं भारत का बेड़ा पार कराने, शिव आए हैं भारत का बेड़ा पार कराने। और
विदेही बाप अब तुम बच्चों को विदेही बनाने हैं।
और पावरफुल बताओ, अच्छा ही हुआ, ये निश्चय रहेगा तो अच्छा लड़ोल रहेंगे,
जो हो रहा है अच्छा हो।
एक मुरली था, एक स्लोगन,
मीठा बोलना,
मीठा बोलना, एक गंभीरता के ऊपर वरदान था ना, सेवा की और वरदान और वर्णन किया,
ये काम
आधा खत्म, सेवा की वर्णन किया खत्म। एक है सेवा समाचार सुनाना, वो भी यज्ञ का नियम है कि कहीं कोई जाता है तो सेवा समाचार, तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो कितना मैपन से सुना रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, यूज इन थर्ड पर्सन में बात करती हो तो दादी कहती है, दादी को संकल्प आया, थर्ड पर्सन में बात है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। एक है मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है, दादी को संकल्प आया कि आज सबको ब्रह्मा भोजन दिया जाए, ये है थर्ड पर्सन में बात करना, जिसमें मैं तो है ही नहीं कहीं। वो रख दो, पढ़ाई एग्जाम से पहले, एग्जाम के दिन पढ़ाई नहीं होती है,
एग्जाम में भी नकल
मारते हैं। तो गंभीरता का गुण जो है, तुमको ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है, जहाँ जो चाहे जो मन में आता है वो बोल देते हो, बाबा ने कहा जो मन में आता है, इसके लिए उसको फिर यहाँ पे जोड़ा, सेवा की और वर्णन किया तो आधा खत्म, सेवा की वर्णन नहीं किया तो जमा होगा। वो सूरज भाई की क्लास में है ना, एक बहन का उदाहरण देते हैं, ऐसे काल्पनिक, एक बहन है वो बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा बच्ची क्या क्या किया, तो वो चालू हो गई, बाबा मैंने इतने लोगों का लाखों का कोर्स कराया, कई सारे सेंटर्स खोले, देश विदेश में सेवाएं की, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, ऐसा किया वैसा किया, फिर इसको भी ये किया, वो अपना सुना रही है, अच्छे से सुना रही है, बाबा ने पूछा क्योंकि, तो वो सुना रही है मैंने ये 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 ऐसे ऐसे किया। तो बाबा ने एक ही शब्द कहा, बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया, खत्म। कर कौन रहा है, करा कौन रहा है, ये कि मैंने किया, ये जो है ये ही सारा गड़बड़ है, इसमें अहंकार
नहीं किया, मैंने नहीं किया।
अरे बाबा कुछ संगम युग पर तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब परमात्मा कुछ है, ये याद रखो, संगम युग पर जो कुछ हो रहा है, हम जो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना, यहाँ बैठकर ज्ञान चर्चा भी कर रहे हैं, ये भी ईश्वरीय कृपा है, बिना ईश्वरीय कृपा को अगर हटा दिया जाए तो हम गिर जाएंगे, उसके वही आधार है, उसके आधार से ही आत्मा पुरुषार्थ कर, उसके आधार से ही अमृत वेला कर रही है, उसके आधार से ही जीवन में चल रही है, नहीं तो यहाँ से जाने वालों की कमी है क्या। जैसे वो कृपा हट गई, अर्जुन को लग रहा था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अहंकार आ गया था उसमें, जैसे कृष्ण गया युधिष्ठिर को लगा उसके उसके नगर में कुत्ते भौंक रहे, नगर को घरों को ताले लग रहे, तो उसको लगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, उधर से न्यूज आया कि कृष्ण गया, तब पता चला ये जो कुछ कर रहा था वो कर रहा था। अर्जुन को भी अहंकार था कि मैं कर रहा था, उसको लूट लिया भीलों ने, कहा इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसको भीलों ने लूट लिया, आबू के पहाड़ी के नीचे ऐसा भी कहते, तो कहाँ है उसका पौरुष पराक्रम, हमारे अंदर जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी कृपा है, उसको अगर भूला तो गिर जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे, जो बोल रहे ज्ञान चिंतन मनन अध्ययन सब सब कृपा है। महान आत्माओं का संग बिना हरि कृपा मिला नहीं संता, ये महान आत्माओं का संग भी उसकी कृपा है, सब कुछ कृपा है, भले कृपा आशीर्वाद और दया बाप नहीं करते पर वो करता है। और कुछ बोलो एक हफ्ते में, हाँ मुख, अभी देखो बाबा ने नई परिभाषा बताई है योग और सेवा की, योग अर्थात बच्चा, मन से बाबा बाबा सोचता है या बोलता है तो वो है योग। और ये कहना कि बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसा कहते हैं, ये है सेवा। कितनी अच्छी परिभाषा है, ये नई परिभाषा है सेवा की और योग की। बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसा कहते हैं, ये है सेवा। और मुख से केवल मन से, ये है योग। हाँ, योग बाबा शब्द बाबा को वैसे भी पसंद नहीं है। याद करो तुम, याद में चलते फिरते। उस दिन कल की मुरली थी ना, नलिनी बच्चे से बाप पूछते किसकी याद में बैठे हो, तो बाप की याद में। आगे पूछा बाप को भी याद करना है तो चक्र को भी याद करना है, तो फिर वर्षे को भी याद करना है, तो फिर घर को भी है, सभी आ जाओ। केवल शांति में ये भी करो वो भी करो वैसे करो सब करना है।
अवस्था में नहीं जाना।
हाँ, वो
और क्या तो दर्शन चक्र की बात थी, उत्थान और पतन।
उत्थान और पतन, उत्कृष्ट और
शिवालय और वैशालय।
शिवालय और वैशालय, सत्वप्रधान और तमोप्रधान,
ऐसे दो दो शब्द याद रहे।
ऐसे बहुत सारे, जीवन मुक्ति, जीवन बंद,
जीत हार,
जय पराजय, प्राप्ति अप्राप्ति, शुभ अशुभ, पूज्य पुजारी, ऐसे कई शब्द है।
और फिर बोले भी एक,
हाँ, साक्षात्कार कराएंगे। और ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ तो तुमको कृष्ण का साक्षात्कार, विष्णु का साक्षात्कार, लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। इशारा देंगे, डायरेक्शन देंगे, जाओ इनके पास। और अष्टरतन, अष्टरतन कौन कौन से
हैं जिनके?
नवरतन कौन कौन से?
नवरतन तो नहीं, बाबा शिव बाबा बीच में आ जाते हैं।
मोती, हीरा,
पुखराज,
पन्ना, माणिक, गोमोद, और भी है लहसुनिया, लहसुनिया है, और नीलम है, और एक है, और एक है ये नहीं, मांगा, मांगा, मूंगा, 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 ये है नवरत्न। हर एक रतन का अपना अपना महत्व है। पुखराज यहाँ पहनना, किसने राजनीति वाला है तो यहाँ पहनेगा, करांगली में कौन सी, कनिष्का में कौन सा पहनना है, मध्यमा में कौन सा पहनना है, ये अपना अनामिका में कौन सा पहनना है। अगर इसका इधर पहन लिया तो गड़बड़, पूरा अनिष्ट हो जाएगा। जो राजनीति वाले ऐसे ऐसे जो करते हैं प्रशासन वाले, उनको यहाँ पुखराज पहनते हैं वो लोग, यहीं पहनना चाहिए। अगर पुखराज को गलती से यहाँ पहन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। और नौ, नौ रत्नों का कनेक्शन नौ ग्रहों के साथ है, एक एक ग्रह के साथ एक एक जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे सारे हैं। चार, चार उंगलियां, कभी कोई कोई दो दो एक साथ पहन सकते हैं, जैसे वो माणिक और ये एक दूसरा एक है कौन सा, मूंगा, वो साथ में पहना जा सकता है। तो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो पूरा बताएगा डिटेल कौन सा कहा पहनना। तो बाबा उनको भी याद करता है, सब बातें हैं मुरलियों में। कभी गुरु गोविंद सिंह को याद करता है, तो कभी वो उसके कंगन को याद करता है, तो कभी उसकी तलवार को याद करता है। वो उसका शरीर है, पहले तो छोटा था, फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह आए तो उसने अपने पिताजी का भी थोड़े जदाल दिया। पहले जो था पांचवा गुरु अर्जुन देव, उसने सबसे पहले बनाया गुरु ग्रंथ साहिब। फिर बाद में जब गुरु गोविंद आया तो उसने और एडिशन कर दिए, और उसने और 17 बाकी रचनाकारों को भी डाल दिया उसने। फिर कबीर के भी दोहे डाल दिए, नामदेव को भी डाल दिया, और बाकी लोगों को भी डाल दिया। वो इतना पकड़ा के 1400 पेजेस का वो बन गया गुरु ग्रंथ साहिब। सब उसमें सब
है, अभी नहीं डाल सकता,
अभी नहीं बोले, वो तो आखिरी है ना,
आखिरी गुरु ग्रंथ,
आखिरी गुरु वही है गुरु ग्रंथ। तो बाबा उसको भी याद करते हैं, बाबा सब याद करता है मुरलियों में। मुरली मतलब उसमें हर चीज है, बड़ौदा के राजा से लेके, तो वो नेपाल का राजा कहाँ जाता है से लेके, तो अमेरिका में क्या होता है, तो डायमंड, हाँ सच्चा सच्चा डायमंड हार्बर भी ये मधुबने, ये एक पॉइंट रहेगा। तो सब है, तो मुरली को वर्ल्ड टाइम्स कहा जाता है, वर्ल्ड टाइम्स, जिसमें विश्व भर की कल्प के आदि मध्य अंत की न्यूज आती है, कब कब क्या क्या हुआ, सतयुग में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ, त्रेता में क्या, वर्ल्ड टाइम। अच्छा, ओम शंकर।